समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो समाचार जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तित्व को भी हम याद करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या जन्मदिवस। परिक्रमा के इस अंक में आपके साथ मैं हूं दिव्या तोमर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो दिव्या, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट दिव्या तोमर। एंड फॉर यू विद अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज एंड डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल्स बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत वैश्विक भविष्य को आकार देने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
उड़ान स्कीम कंप्लीट्स 8 ईयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेज इट हैज ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज एविएशन सेक्टर।
प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी।
साइक्लोन दाना लाइकली टू मेक लैंडफॉल इन ओडिशा बाय थर्सडे सेज IMD।
और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में मेक्सिको के क्लार्क्स काला में भारत की दीपिका कुमारी ने रजत पदक जीता।
एंड नाउ दिव्या, इट्स टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडिया इन व्हिच वी टेक अ लुक एट द डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस एट द नेशनल और द ग्लोबल लेवल। एंड टुडे वी विल टॉक अबाउट पुलिस कमेमोरेशन डे एंड वर्ल्ड आयोडीन डिफिशिएंसी डे। Well, to start off with the first topic, that is the Police Commemoration Day. Well, Divya, today is the Police Commemoration Day in India. It aims to pay homage to the policemen who were killed in an ambush by Chinese troops at Hot Springs in Ladakh in 1959. And it is observed every year on October 21st and serves as a reminder of the valor and commitment shown by police personnel. And the Police Commemoration Day is a time to remember these courageous police officers as well as to appreciate the sacrifices made by police personnel across the country. And also, Divya, this day highlights how police officers risk their lives daily to maintain law and order, protect citizens and face danger in the line of duty.
बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि पुलिस कर्मी जो हैं अपनी जान पर खेलकर हमारी रक्षा करते हैं और वो देश को एक बेहतरीन माहौल देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाते हैं। 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा पर बढ़े तनाव के कारण अक्साई चिन में हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों द्वारा 10 ऑन ड्यूटी भारतीय पुलिसकर्मियों पर घात लगाकर हमला किया गया था। पुलिसकर्मी उस समय खोजी अभियान में लगे हुए थे जब उन पर बिना उकसावे के गोलीबारी की गई। इस हमले में कई अधिकारियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। मृतकों के शव 23 दिन बाद 13 नवंबर 1959 को लौटाए गए और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अपने जीवन का बलिदान देने वाले इन बहादुर पुलिसकर्मियों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए जनवरी 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में 21 अक्टूबर को पुलिस दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया।
यस दिव्या, ऑन दिस ओकेजन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑनर्ड द ब्रेवरी एंड सैक्रिफाइस ऑफ द कंट्रीज पुलिस पर्सनल। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट ही प्रेज द अनवेवरिंग डेडिकेशन टू इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पीपल। ही सेड दैट दे एग्जेम्प्लीफाई करेज एंड डिटर्मिनेशन। एंड मिस्टर मोदी ऑल्सो कमेंडेड द प्रोएक्टिव एफर्ट्स एंड असिस्टेंस ऑफ पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग ह्यूमैनिटेरियन चैलेंजेस। एंड ऑल्सो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह पेड होमेज टू द मार्टर्स ऑन पुलिस कमेमोरेशन डे एट द नेशनल पुलिस मेमोरियल इन न्यू दिल्ली टुडे। The Home Minister expressed his heartfelt gratitude to the security forces for the sacrifices, stressing the immense dedication of both army and police personnel and the families in keeping India safe. He assured that the sacrifices of police personnel who lost their lives in the line of duty will not be forgotten and further committed to eradicating terrorism in the country.
इस दिन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। ये स्मारक पुलिस बलों को राष्ट्रीय पहचान, गौरव, उद्देश्य की एकता, सामान्य इतिहास और नियति की भावना प्रदान करता है। इसके अलावा अपने जीवन की कीमत पर भी राष्ट्र की रक्षा करने की उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। स्मारक में एक केंद्रीय मूर्तिकला, वीरता की दीवार और एक संग्रहालय शामिल है। वीरता की दीवार जिस पर देश के लिए अपनी जान गंवाने वाले इन पुलिसकर्मियों के नाम उकेरे गए हैं। आजादी के बाद से कर्तव्य की पंक्ति में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों की बहादुरी और बलिदान दृढ़ स्वीकृति के रूप में खड़ी है। संग्रहालय की संकल्पना भारत में पुलिस व्यवस्था पर एक ऐतिहासिक और विकसित होती प्रदर्शनी के रूप में की गई है।
Yes, and now we turn our attention to the second topic of the day, that is the World Iodine Deficiency Day. And Divya, like we are saying, today is also the World Iodine Deficiency Day. It is also known as Global Iodine Deficiency Disorders Prevention Day across the globe today. And the day serves as a reminder of the progress made in preventing iodine deficiency disorders through national and global initiatives. Iodine deficiency occurs when the body lacks this essential element. It hampers the production of thyroid hormones, leading to various health issues.
बिल्कुल आपने सही कहा अभिषेक, और आयोडीन शरीर के मेटाबॉलिज्म जैसे कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है। गर्भावस्था के दौरान ये बच्चे के मस्तिष्क और हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गर्भावस्था के दौरान आयोडीन की कमी से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। आयोडीन की अनियमितता से थायरॉयड हो जाता है। थकान के अलावा धीमे मेटाबॉलिज्म के कारण वजन बढ़ना, कब्ज, चेहरे पर सूजन, मांसपेशियों में कमजोरी, शुष्क त्वचा, ठंड के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि, असामान्य मासिक धर्म चक्र, बालों का पतला होना, डिप्रेशन, बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, मेमोरी लॉस जैसे कुछ लक्षण हैं जो कि आयोडीन की कमी से होते हैं।
Yes, and another interesting piece of information. Well, according to the National Library of Medicine, iodine deficiency disorders are a significant global health problem caused by iodine poor soil, leading to low iodine concentration in food and insufficient intake in the population. And iodine deficiency has numerous adverse effects on growth and development and is the most common cause of preventable intellectual disability in the world. And Divya, in India, the government has launched the National Iodine Deficiency Disorders Control Program to address iodine deficiency disorders.
इसके अलावा आयोडीन की कमी को रोकने या उसके इलाज करने के लिए अपने दैनिक आहार में समुद्री शैवाल, आयोडीन युक्त नमक, कॉड मछली, पनीर, ग्रीक दही, अंडे, झींगा, ट्यूना और आलू बुखारा जैसे खाद्य पदार्थ शामिल करें। दैनिक आयोडीन की आवश्यकता उम्र के अनुसार अलग अलग होती है। अधिकांश वयस्कों को 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए 250 माइक्रोग्राम वाले प्रसव पूर्व विटामिन की सिफारिश की जाती है। हालांकि सभी प्रसव पूर्व विटामिनों में आयोडीन नहीं होता है, इसलिए लेवल की जांच करें और ये निर्धारित करें कि क्या अलग से आयोडीन अनुपूरक आवश्यक है। अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से इस संबंध में परामर्श लें। और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
Well, the Indian Navy regularly exercises with various foreign navies at bilateral and multilateral levels, and these exercises are used to project Indian capabilities, hone operational skills, imbibe best practices and procedures, and to enable doctrinal learning. And the Malabar exercise, which started on the 8th of this month in Vishakhapatnam, ended on Saturday, and we have more from a Vishakhapatnam correspondent.
The Malabar 2024 exercise, which commenced on the 8th of this month in Vishakhapatnam, concluded on Saturday. The operations were executed in two distinct phases, in-harbor phase and sea phase. During the sea phase, the Indian Navy collaborated with the Naval Surface and Air Forces of the United States Navy, USN, Japan Maritime Self-Defense Force, JMSDF, and Royal Australian Navy, RAN, sending a clear message to potential adversaries. Major exercises included surface weapon firings, anti-air shoots, air defense exercises, extensive operations of shipborne helicopters, seamanship evaluations including fueling from tankers and maritime interdiction operations. Malabar 2024 CFACE serves as a testament to the commitment of participating nation towards enhancing understanding, collaboration and engagement in the maritime domain as the world grapples with increasingly complex maritime security challenges. On the final day, various activities including anti-submarine warfare operations, cross-rock landings and seamanship maneuvers took place in the Bay of Bengal, providing an engaging spectacle. Subsequently, a closing meeting was convened with the representatives from the four participating nations. The event concluded with a commitment to enhance collaboration in technology, training, awareness, and cooperation to effectively address future challenges. This is Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
और परिक्रमा के अब इस सेगमेंट में हम चलते हैं झारखंड, जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसके लिए दो दिवस का कला महोत्सव 8/81 का शुभारंभ जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, ताकि मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित और जागरूक किया जा सके। आइए सुनते हैं हमारी रांची संवाददाता पूनम केरकेट्टा की ये रिपोर्ट।
झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए राज्यभर में जिला प्रशासन द्वारा कई अनोखे कदम उठाए जा रहे हैं। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 18 और 19 अक्टूबर को दो दिवसीय कला महोत्सव 8/81 का शुभारंभ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रवि कुमार ने किया। कार्यक्रम में नेपाल के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड सहित देश भर के 81 कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से मतदाताओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री के रवि कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य कला के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करना है।
सुबह हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों का मेरे से पूरा आपका वोटिंग पसंद करेगी। यहाँ पर दूर दूर से आए हुए सभी आर्टिस्ट को मैं नए सिर से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग यहाँ पर सब उपस्थित हैं, ये सबको मैं धन्यवाद करता हूँ।
सरायकेला खरसावां जिले के शहरी क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रविशंकर शुक्ल के नेतृत्व में आदित्यपुर ओटो क्लस्टर में छवि नृत्य के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया गया और 13 नवम्बर को मतदान करने की अपील की गयी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर स्वीप कोषांग द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम शहरी मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर में छवि नृत्य के माध्यम से मतदाताओं के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरायकेला खरसावां के ट्रेनी IAS रजत ने बताया कि कलाकारों ने छवि नृत्य से मतदान करने की अपील की।
इस कार्यक्रम में बहुत सारे नाटक का आयोजन कर रहे हैं।
आशा है कि प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इन कदमों का मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिक्रमा के लिए रांची से मैं पूनम केरकेट्टा।
Now on to Maharashtra, and in Maharashtra, political activities are gaining momentum ahead of the assembly elections. The notification for polls will be issued tomorrow. The last date for filing of nominations will be the 29th of this month, and the BJP has already announced its first list of 99 candidates for the polls. Our correspondent has filed a report on various developments related to elections in the state.
The seat-sharing formula of the ruling Mahayuti has not yet been finalized. Leaders from the Mahavikas Aghadi have stated that their seat-sharing discussions are in the final stages and will be announced soon. Meanwhile, Dr. Jyoti Mete, founder of the Shiva Sangram Party, joined the NCP-SP and expressed her desire to contest from the Bid Assembly constituency. Former president of the Nandurbar District Council, Bharat Gavit, joined the NCP, while Siddharth Devay of the Vanchit Bahujan Aghadi and former legislator Shuram Uttarkar joined Shiv Sena UBT. BJP's Bid district president Rajendra Mhaske resigned from his post but has not yet joined any other party. Ankita Apte, Akashwani, Mumbai.
And now we will take on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
On 21st of October 1934, Congress Socialist Party was established by leaders like Jayaprakash Narayan and Acharya Narendra Dev. The success of the Russian Revolution had sowed the seeds of socialism in the minds of Indians during the 1920s and 1930s.
There was a lot of young population that was dissatisfied with the withdrawal of the non-cooperation movement and also with the nationalists' political actions. The ideologies were given tremendous push by star campaigners like Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru, and Subhash Chandra Bose.
Thus, in 1934, Congress Socialist Party helped organize peasants and workers in class organizations, promoted anti-imperialism, fight against poverty and landlordism.
Their momentum came during the Quit India movement, when Congress Socialist Party members participated in large numbers and kept the movement alive in the absence of top leaders, who were all arrested by the imperial rulers.
On the 21st of October 1943, Netaji Subhash Chandra Bose announced the establishment of the Provisional Government of Azad Hind in Singapore. It was known as Arzi Hukumat-e-Azad Hind. The Provisional Government not only enabled Bose to negotiate with the Japanese on an equal footing, but also facilitated the mobilization of Indians in East Asia to join and support the INA.
Netaji proclaimed total mobilization. He said, "Time has come for 3 million Indians living in East Asia to mobilize all their available resources, including money and manpower. Half-hearted measures will not do. Out of this total mobilization, I expect at least 300,000 soldiers and 3 crores, that is $30 million.
With the formation of the Provisional Government of Azad Hind, mobilization of the Indian communities for armed struggle was stepped up. Many Indian civilians from Malaya, Thailand and Burma responded enthusiastically. Others contributed money and gold generously to the INA fund. The gold came mostly from women who readily gave up their jewelry, while wealthy Indian families donated large sums of money after attending Bose's rallies and meetings.
Other forms of contributions included clothing, foodstuffs, and other supplies that the INA could use. By April 1944, the Azad Hind Bank was established in Rangoon to manage the overwhelming donations from the Indian communities. He envisioned the Army of Liberation as the future National Army of Free India and exhorted people with the war cry, "Comrades, my soldiers, let your battle cry be Dilli Chalo, Dilli Chalo."
Under the Provisional Government, Bose was the head of the state, the Prime Minister and the Minister for War and Foreign Affairs. Captain Lakshmi headed the women's organization, while S.A. Iyer headed the publicity and propaganda wing.
Ras Bihari Bose was designated as the supreme advisor. Soon after the announcement, the provisional government had received recognition from various countries. Till its dissolution when Japan lost to Allied powers, Azad Hind Fauj was an imminent threat for the British might.
Shri Krishna Sinha was born on the 21st of October 1887 in Nawada district of Bihar. Sinha played a key role in the success of the non-cooperation movement and the civil disobedience movements in Bihar. He was imprisoned several times and spent 8 years in prison.
Along with his participation in the independence struggle, Sinha also contributed as an able administrator and legislator. He served as a member of the Bihar Legislative Council in 1927. He was appointed as the Premier of Bihar Province in 1937. Sinha later resigned in protest over the question of the British involving India in the Second World War without the consent of the Indians.
Sinha served as a member of the Constituent Assembly from the province of Bihar. In the Assembly, he took active part in discussions relating to the objective resolutions. Post-independence, Sinha was appointed as the first Chief Minister of Bihar.
He was known for being the first Chief Minister of the country to abolish the Zamindari system. implementing river valley projects in Kosi, Aghor and Sakri, and also introducing heavy industries like oil refining and fertilizer production in Bihar. He passed away on 31st of January 1961.
In business news today, Indian equity indices ended on a weak note today. The benchmark indices started the day in green but failed to sustain their rally as the session progressed. The Nifty 50 wrapped up today's session with a drop of 0.45% or 112 points, closing at 24,741, while the Sensex finished the trading day down by 0.5%, closing at 81,180. And now on to some sports news. In archery World Cup final, India's Deepika Kumari clinched the silver medal in the women's recurve category at the Tlaxcala, Mexico today. She faced a defeat to Li Jiaman of China, 0-6 in the final.
मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने ब्रिटेन को 6-4 से हरा दिया है. इससे पहले मैच में भारत ने जापान को 4-2 से हराकर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की थी. भारत का अगला मैच कल मेजबान मलेशिया से होगा. आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने द्विभाषी साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के बारे में परिचर्चा प्रसारित करेगा. इस कार्यक्रम में पेंशन और पेंशन प्राप्तकर्ता कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेन गुप्ता श्रोताओं के सवालों के जवाब देंगे. आप रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 011-234-21050 और 011-233-14444 डायल करके प्रश्न पूछ सकते हैं. आप अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए 92890-94044 पर भी भेज सकते हैं. और अब समय है उन व्यक्तित्व को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि. इस क्रम में सबसे पहले हम याद करेंगे
जैक कैरुआक, हु पास्ड अवे ऑन दिस डे इन 1969. ही वाज एन अमेरिकन नॉवेलिस्ट एंड पोएट हु अलोंगसाइड विलियम एस बारर्स एंड एलन जिन्सबर्ग वाज अ पायनियर ऑफ द बीट जनरेशन ऑफ फ्रेंच कैनेडियन एंसेस्ट्री. कैरुआक वाज रेज्ड इन अ फ्रेंच स्पीकिंग होम इन लोवेल, मैसाचुसेट्स. ही लर्न इंग्लिश एट एज 6 एंड स्पोक विद अ मार्क्ड एक्सेंट इन टू हिज लेट टीन्स. During World War II, he served in the United States Merchant Marine. He completed his first novel at the time, which was published more than 40 years after his death. His first published book was The Town and the City, and he achieved widespread fame and notoriety with his second, On the Road, in 1957. It made him a beat icon, and he went on to publish 12 more novels and numerous poetry volumes. And also Divya Mary Alice Camerie, popularly known as Linda Goodman, passed away on this day in 1995. She was a New York Times best-selling American astrologer and poet. She wrote the first astrology book to make the New York Times bestseller list. Linda Goodman assumed the name Linda during World War II for a popular WCOM radio show in Parkersburg that she hosted called Love Letters from Linda. Each show consisted of her reading letters written between soldiers and their loved ones. Each letter was punctuated with a popular song of the day. And some have suggested that Linda Goodman was responsible for accelerating the growth of the New Age movement through the unprecedented success of her first astrology book, Linda Goodman's Sun Signs. And this was the first astrology book ever to earn a spot in the New York Times bestseller list. It was followed by Linda Goodman's Love Signs, which was also made to the New York Times bestseller list.
और हिंदी सिनेमा के किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाने जाने वाले यश राज चोपड़ा की आज पुण्यतिथि है. वे भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्माता थे. यश चोपड़ा ने 1959 में पहली बार अपने भाई के बैनर तले ही बनी फिल्म धूल का फूल का निर्देशन किया. वर्ष 1965 में आई फिल्म वक्त यश चोपड़ा की पहली हिट फिल्म साबित हुई. दीवार, कभी कभी, डर, चांदनी, सिलसिला, दिल तो पागल है, वीर जारा जैसी अनेक बेहतरीन और रोमांटिक फिल्में बनाने वाले यश चोपड़ा ने पर्दे पर रोमांस और प्यार को नए मायने दिए. फिल्म इत्तेफाक उनकी उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है जिसमें उन्होंने कॉमेडी और रोमांस के अलावा थ्रिलर पर भी काम किया। यश चोपड़ा को 11 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें 1964 में निर्देशित फिल्म वक्त के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा दीवार, लम्हे, इत्तेफाक, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के लिए भी सर्वश्रेष्ठ निर्माता का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी यश चोपड़ा को सम्मानित किया गया। 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत जो कि आज भी लोगों की जुबान पर रहता है।
ऐ मेरी जहरा जबान तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हकीकत और है जहान तुझको तर जान मेरी जान दे जान। ऐ मेरी जहरा जबान तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है।
And Yash Raj Chopra is considered among the best Hindi filmmakers, particularly known and admired for his romantic films with strong female leads. And also Divya Stephen Paul Smith passed away on this day in 2003, known as Elliot Smith. He was an American musician and singer-songwriter. He was born in Omaha, Nebraska, raised primarily in Texas, and lived much of his life in Portland, Oregon, where he gained popularity. Smith's primary instrument was the guitar, though he also played piano, clarinet, bass guitar, drums, and harmonica. He had a distinctive vocal style, and Smith rose to mainstream prominence when his song Miss Misery, included in the soundtrack for the film Good Will Hunting in 1997, was nominated for the 1998 Academy Award for the Best Original Song. Let's listen to it.
I'll fake it through the day with some help. You try to walk ahead. Someone points a knife down the drain to put my thoughts in my head.
बॉलीवुड के खलनायक अजीत खान ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। इनका वास्तविक नाम हामिद अली खान था, लेकिन फिल्मी दुनिया में इन्हें बतौर खलनायक अजीत के नाम से जाना जाता है। नास्तिक, मुगले आजम, नया दौर और मिलन जैसी 200 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अजीत खान का हिंदी सिनेमा में योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। अजीत ने अपना मनपसंद और कभी भुलाया नहीं सकने वाला किरदार निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म कालीचरण में निभाया। आइए सुनते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध संवाद।
मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लाइन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की हो।
Yes, and Shami Kapoor, born Samsher Raj Kapoor, was born in this day 1931. He was an actor known for his work in Hindi cinema. Kapoor is considered as one of the greatest and the most successful actors in the history of Indian cinema. In a career spanning over 5 decades, Kapoor worked in over 100 films. He is the recipient of 3 Filmfare Awards, including one for the Best Actor. And Kapoor rose to widespread recognition with the romantic blockbuster Jangli in 1961 and went on to become one of the most marketable Bollywood stars. Let's listen in to a medley of his hit songs.
कहे कोई मुझे जंगली कहे, कहे मैं तो जी कहता रहे, हम प्यार के तूफानों में फिरे हैं, हम क्या करें। कहे कोई मुझे जंगली कहे, तो मुझे बुलाना पाओगे।
हिंदी फिल्म जगत ने 70-80 के दशक में अपने नृत्य से सिनेमा जगत में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली हेलन का आज जन्मदिन है। हेलन का वास्तविक नाम हेलन रिचर्डसन खान है। हेलन का जन्म बर्मा में 21 अक्टूबर 1939 को हुआ था। हेलन सबसे पहले कोरस डांसर के रूप में 1951 में फिल्म शबिस्ता और आवारा में नजर आई। बॉलीवुड की पहली आइटम गर्ल के तौर पर पहचानी जाने वाली अभिनेत्री हेलन ने बॉलीवुड का उस वक्त आइटम नंबर से परिचय कराया।
पिया तू अब आजा, शोला का मन दहकी आके बुझा जा।
इसके साथ ही श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो मुझे और अभिषेक को दीजिए अनुमति।
नमस्कार।